Assalamualaikum everybody, welcome to Baat Khabar. This is episode 8. पिछले दो एपिसोड से हमने बात की महंगाई के बारे में. महंगाई किस तरीके से मेजर होती है पाकिस्तान में, क्या उसके चैलेंजेस हैं, एक आम पाकिस्तानी को महंगाई किस तरीके से असरअंदाज करती है, किन तबकात पर महंगाई किस तरीके से असरअंदाज होती है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन. तो महंगाई पे जब हमने डिस्कस किया तो वी चोज दैट फर्स्ट बिकॉज एक इप्सोस का सर्वे था मार्च 2021 का, जिसमें दे ट्राइड टू ट्रैक के पाकिस्तानियों का सबसे बड़े कंसर्न क्या थे. तो उसमें नंबर वन था महंगाई और नंबर टू था बेरोजगारी, विच इज अनएम्प्लॉयमेंट, जिसका आप काफी सुनते हैं, जिसका काफी इल्जाम लगता है हर हुकूमत पर, स्पेशली इस हुकूमत पर. तो आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि बेरोजगारी क्या है, किस तरीके से मेजर होती है, उसके क्या असर पड़ते हैं पूरे पाकिस्तान पर, और इसका क्या किया जा सकता है. सो विदाउट फर्दर डू, फर्स्ट माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू फैज इज के बिकॉज वी बीन डिस्कसिंग महंगाई फॉर द पास्ट टू एपिसोड्स, इज देयर अ रिलेशनशिप बिटवीन महंगाई एंड बेरोजगारी?
थैंक्स अनिल. सो theoretically speaking, there is a relationship between unemployment and inflation, and it's supposed to be inverse. So matlab ulat chalte hain ye dono. So agar inflation high hoti hai to fir unemployment low hoti hai, agar unemployment high hoti hai to inflation low hoti hai. Theoretically ye framework chalta hai, aur ye 1960s 70s mein frameworks banne shuru hue the, but hum theory mein itna zyada nahi ho sakenge. But just to explain, aap khud hi soche, agar unemployment bahut zyada hai, जिसका मतलब वर्कर्स का सप्लाई, जो पीपल लुकिंग फॉर वर्क, उसका सप्लाई बहुत ज्यादा होगा. अगर सप्लाई ज्यादा होगा तो प्राइस जो उन वर्कर्स को पे करनी पड़ेगी, उनकी जो वेजेस होती हैं वो कम हो जाएगी. राइट, दैट्स बेसिकली एज सिंपल एज दैट. यू हैव टू थिंक अबाउट कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, सप्लाई ऑफ वर्कर्स विल बी हाई, वेजेस विल बी लो, एंड इफ वेज इन्फ्लेशन इज लो, टिपिकली कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की हमने लास्ट टाइम बात करी थी, तो ओवरऑल प्राइस लेवल विल ऑल्सो बी लो. ठीक है, obviously throughout the years US mein bhi thodi bahut research hui thi iske bare mein, and then people said this relationship doesn't really hold, aur kabhi kabhar ye short term mein hold karti hai lekin long term mein hold nahi karti. Agar aap Pakistan ka bhi pichle kuch saalon ka data dekhenge to aapko yahi dikhega ki matlab unemployment has stayed between 5-6%, usse zyada badi nahi hai, jabki aapko pata hai ki inflation kahan se kahan ja chuki hai in pichle 10 saalon mein. ऑल्सो पाकिस्तान में स्टैगफ्लेशन भी होती है. तो स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड हाई इन्फ्लेशन. ये बहुत कम टिपिकली दूसरे ममालिक में होती है, लेकिन पाकिस्तान में काफी दफा अकर हो चुकी है. आपने लास्ट टाइम पीपीपी के टाइम पे बात करी थी कि 2009 में जैसे हाई इन्फ्लेशन चल रही थी, उस वक्त हाई अनएम्प्लॉयमेंट भी थी. अगेन, मैं जब हाई अनएम्प्लॉयमेंट बोल रहा हूँ, हम इसमें घुसे हैं मेरे ख्याल से आगे जाते हुए, कि पाकिस्तान का डेटा थोड़ा सा मर्की है. तो मतलब हाई अनएम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान हैज बीन लाइक 6.2%, जो मैं इस टाइम की बात कर रहा हूँ. मतलब बहुत बहुत कम, टेक्निकली कम अनएम्प्लॉयमेंट है, बिकॉज आप इंडिया बांग्लादेश का भी देखेंगे, जो हम रीजनल कंपेरिजन की काफी टाइम से कंपेयर करते हैं, उनकी रेंज भी ऐसी ही चलती है. मतलब 5-6% के बीच में उनकी भी अनएम्प्लॉयमेंट चल रही होती है. सो In short, there is a relationship between unemployment and inflation theoretically, लेकिन हमारे data में इतना ज़्यादा hold नहीं करती. But एक चीज़ और important जो है इसमें add करने की, वो है कि हमने State Bank of Pakistan की amendment की बात करी है, ठीक है, और हम बात करें कि अब State Bank inflation target करेगा, like domestic price stability target करेगा. लेकिन अगर वो amendments आप थोड़ी detail में पढ़े ना, तो चले primary उनका objective है price stability, दूसरा जो ऑब्जेक्टिव रखा हुआ है उन्होंने वो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, तो बैंकिंग सेक्टर की रेगुलेशन फॉर एग्जांपल. लेकिन तीसरा उन्होंने टर्शियरी ऑब्जेक्टिव जो रखा है वो रखा है कि फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. ठीक है, हमने फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में लेबर भी इंक्लूड होती है, जैसे बाकी सारी रिसोर्सेज इंक्लूड होती है, तो उनको एज क्लोज टू पोटेंशियल जीडीपी रखने के लिए अनएम्प्लॉयमेंट कम रखनी पड़ेगी. राइट, बट थियोरेटिकली ये थोड़ा बहुत समझना चाहिए कि State Bank needs to think about pro-growth policies as well, ताकि वो unemployment कम से कम रखे, at the same time inflation भी कम से कम रखे. तो ये trade-off जो है ना, थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा उनको आगे जाते हुए. But to answer your question, in short, relationship है, but इतनी strong नहीं है in Pakistan, I think primarily because of data reasons.
Okay, Now, getting to the point of data, I think barring a couple of years, jahan 7-7.5% hogi, 5-6% takriban ye rahi hai throughout past decade or so. Now, what is the significance of that 5-6%? Like, what do people understand ki jab wo sunte hain ki yaar 5-6% unemployment rate hai? How does Pakistan calculate its unemployment levels and unemployment rate?
Hey, bilkul. So, ab thodi mathematics karte hain hum saath mein. Theek hai? So, unemployment rate would be total unemployed over unemployed or employed. Sabse pehle to matlab ye agar hum ratio ke bare mein thoda sa sochein. So unemployed or employed milake hamari kehlati hai labor force. Ye hote hain currently active people in the labor force ko jaise kehte hain. So apni puri population ko dekhen, theek hai, population mein se aap nikal dein people who are not of working age, theek hai, international estimates mein 15 saal se kam ko count nahi karte aur 65 se upar ko count nahi karte. Pakistan mein 10 saal se count karna shuru kar dete hain within working age. That's just the nature of work in Pakistan. Lekin jab aap international comparisons karte hain, wo ek adjusted aapko number dikhate hain. So the any international comparisons jo aap dekhenge, wo sare comparable honge. Aise nahi hai ki hum ek, we're not comparing apples to apples. To Pakistan ki jo actual definition aur main padh ke bataunga taaki, because I'm not a labor economist, so mujhe itna rati bhi nahi hai sari definitions. To inki hai population not in the labor force, so ye jo phir exclude jo karte hain, can be those in school, engaged in household activities, theek hai, iska main abhi thodi der mein aage batata hu, retired, too young, jo maine abhi bola, handicapped, unable to work for any other reason, agricultural landlords, property owners, so basically wo actual kaam nahi kar rahe, they're realizing you know, they rely on rent income ya phir capital gains ya phir dividends mil rahe ho unko. All of that is basically unko phir, they're not counted in the labor force. ठीक है, तो आप पहले तो ये निकाल देते हैं, तो वर्किंग एज पॉपुलेशन लेते हैं, उसमें से फिर आप ये सारी जो नुआंसेस हैं थोड़े बहुत निकाल देते हैं, और फिर आप देखते हैं इस लेबर फोर्स में से कितने एम्प्लॉयड हैं और कितने अनएम्प्लॉयड हैं. अब अगेन फिर उसमें काफी सारी डिटेल्स आ जाती हैं. द थिंग इन पाकिस्तान मेरे हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट से ज्यादा जो हमें सोचना चाहिए वो ये कट डाउन के बारे में सोचना चाहिए कि इवेंचुअल वर्किंग एज पॉपुलेशन में से कितने लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. सो पाकिस्तान के लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है इज पर्टिकुलरली लो. सो 68% ऑफ मेल्स ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन पार्टिसिपेट, व्हाइल ओनली 20% ऑफ फीमेल्स डू. बहुत बड़ा फर्क है ये, ठीक है. और ये मैं 20% आई एम गिविंग यू अ वेरी हाई नंबर रिगार्डलेस, बिकॉज बलोचिस्तान में फॉर एग्जाम्पल इट्स एज लो एज 9% something. So 10% se bhi kam female labor force participation hai. Punjab mein koi 30% ke kareeb hai. So that's basically how you get the 20% female labor force ka participation ka number. Again, maine beech mein bola tha ki housekeeping ko exclude karte hain. To wo ek ratio wo bhi report karte hain ki aap usko agar housekeeping ko bhi include kar le, to phir hamari total labor force participation koi 52% aa jati hai. और फीमेल की लगभग आई थिंक टेक्स इट अप टू 35% फ्रॉम द 20% आई मेंशन्ड. तो अगेन इट्स रिलेटिवली लो इन पाकिस्तान, एंड यू नो देयर आर रीजंस रिगार्डिंग दिस दैट वी कैन प्रोबब्ली डिस्कस, बट आई थिंक द ऑब्वियस वंस दैट एवरीवन कैन थिंक ऑफ इज कि हमारा है पेट्रियार्कल कल्चर, थोड़ा बहुत मर्दों को ज्यादातर एम्प्लॉयमेंट में प्रेफर करते हैं, या फिर कल्चरल रीजन से की वजह से लोग औरतें कुछ घर पे बैठ जाती हैं. But maybe let's get into the details later. I'm also not super comfortable with two guys talking about this. I think अगर हम female perspective सुने, you will hear all sorts of things like security and safety being an issue. Urban areas में हम समझते हैं कि हम बहुत, मतलब अगर कराची के रहने वाले हैं तो फिर urban areas में you know female participation will be higher. It's actually not. Female unemployment is higher in like cities like Karachi, urban areas mein generally zyada hoti hai, primarily because of security and safety reasons. Aakhri point I guess is around this, but if I could think of reasons, is ki aapke daycare center facilities ke, matlab aapne पाकिस्तान में कितना ही सुना होगा आपने के, तो अगर जो काम करती भी है वो अपनी टिपिकली अम्माओं के घर पे या यू नो पेरेंट्स के घर पे बच्चों को छोड़ के जाती हैं अगर वो इफ देर एट अ यंग एज. ऑल ऑफ दीज कॉम्प्लिकेशंस रियली यू नो हैम्पर फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इन पाकिस्तान.
So that's a very concerning statistic. I know for a fact that 20-25% jo hai, of females who with a bachelor's and a master's degree, I think 25% for a master's degree and 20% or something for the bachelor's degree, are females who do not enter the workforce. And I can count on my hand the number of MNCs and FMCGs that have those daycare centers. But yes, it's awkward for two men to be talking about the issues that females have in this country, but we'll get back to that. I want to stick to data because
you spoke about. If I add a statistic, I know it's awkward, but I think awareness so for sure raise करनी चाहिए है इसके बारे में. When you say के university graduates जो हैं 25% enter कर रहे हैं labour force में females, remember के university enrollment is half and half. So it's not like के okay, मतलब people can come in and say के you know मतलब come less women are going into universities or tabhi graduates kam honge isliye 25% enroll whatever they're getting jobs, but remember half and half aapki university enrollment hai, so that education is really not the issue over here.
So again my view of things was ke 100 agar females graduate hoti hain usme se sirf 25 kaam karti hain. Now, this is across industries. They could be doctors, they could be business graduates, engineers, whatever, right? Regardless of the amount of money that they spend, regardless of the amount of time and skill that they've acquired, some reason or the other, and there's many reasons to this, 75% are not being absorbed into the workforce. We'll get to that. I would stick to my question on data, okay, how is unemployment measured? Just like inflation, like last time you described, okay, inflation mein ho ye raha tha ke we calculate weightages based on like every 10 years or something, right? And that was one of the issues, okay, if we were to do this more frequently and more regularly, we would have more representative weightages. That was a concern with regards to the measurement of inflation. Do we have similar challenges with unemployment data, and what kind of challenges do we have in Pakistan?
Yeah, सबसे पहला चैलेंज मेरे हिसाब से ये है कि वो डेटा रिलीज नहीं करते. I think in general, if you think about it, so labor force survey technically हर साल होना होता है. So जैसे उनका अपने हर 10 साल की बात करी कि उनका price weightages calculate होती है, labor force की survey जो है वो हर साल होना होता है. ठीक है, और हर अगले साल रिलीज होना चाहिए. सो हमारे तक अभी लास्ट जो सर्वे एंड दिस डेटा दैट वी आर टॉकिंग अबाउट हैज वाज लास्ट डन इन 2017-18. ठीक है, जबके बाद से अभी तक डेटा रिलीज नहीं हुआ है. सुनने में आया है, एक्चुअली एक फुटनोट में लिखा हुआ है इन वन ऑफ द रिपोर्ट्स कि 2018-19 का सर्वे हो चुका है, बट इट्स अवेटिंग अप्रूवल. ठीक है, तो हमारे पास 18-19 का अभी तक डेटा नहीं आया है, हम 21 में पहुंचे हुए, राइट? अब इसमें लाइक थिंक अबाउट हाउ कंसर्निंग दिस इज कि आपने अभी कोविड एक्सपीरियंस करा है, आपने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रियलाइज करी है इन लेबर स्टैटिस्टिक्स की. ठीक है, एहसास प्रोग्राम को हैड टू एंड दे डिड अ फैंटास्टिक जॉब ऑफ ट्राइंग टू यू नो अंडरस्टैंड विदाउट डेटा के कहां से. सो आपने सेल्फ रिपोर्टिंग उन्होंने शुरू करी, जो आप टेक्स्ट SMS करते थे एटसेट्रा, एंड वो सब करने की आपको जरूरत इसलिए पड़ी, वो सोशियो इकोनॉमिक रजिस्ट्री बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आपके पास डेटा नहीं है. ठीक है, आपको एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स कोई अंदाजा नहीं है. ये सर्वे भी जो होता है वो कॉले होती है और वो पूछते हैं दे आस्क यू अबाउट लास्ट वीक, तो उसी तरह रिप्रेजेंटेटिव सैंपल देखते हैं पाकिस्तान का और फिर हाउस होल्ड्स को कॉलिंग करते हैं कि पिछले हफ्ते यू नो आपकी एजेस पूछेंगे, एम्प्लॉयमेंट पूछेंगे, पिछले हफ्ते की कितने घंटे आपने काम करी, वर यू एम्प्लॉयड एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड, अनविलिंगली विलिंगली, ताकि वो लेबर फोर्स में क्लासिफाई करें कि ना करें. और सो इट्स वेरी क्रूड मेरे हिसाब से. ऐसे सर्वे 100% होने चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा कि नहीं होने चाहिए, लेकिन थिंक अबाउट अगर हमारे पास ये सोशियो इकोनॉमिक रजिस्ट्री रियल टाइम में अपडेट हो रही हो. ठीक है, अब वो रियल टाइम में अपडेट कैसे होगी अगर लोग फॉर एग्जाम्पल वुड बी रजिस्टर्ड. हमारी फॉर्मेलिटी इकोनॉमी में ज्यादा होगी, इनफॉर्मल इकोनॉमी हमारी जो है कोई एम्प्लॉयमेंट के लिए आज से 72% आर एम्प्लॉयड इन इनफॉर्मल सेक्टर. अब अगर इनफॉर्मल सेक्टर की इतनी ज्यादा प्रोपोर्शन है तो उसमें आपको डेटा गैदर करना फ्रॉम रियल टाइम सोर्सेज बहुत ही मुश्किल होगा. ठीक है, द ओनली वे दैट यू कैन प्रोबेबली डू दिस वेल इज क्या कि सोशल सिक्योरिटी आपकी बेहतर होगी, एहसास प्रोग्राम की रजिस्ट्री की जो हम बात कर रहे हैं, अगर लोग विलिंगली रजिस्टर करें कि हमारी ये अनएम्प्लॉयमेंट है और यू नो टू गेट फंड फॉर एग्जाम्पल, या फिर हमारी इंप्लॉयमेंट इतनी है और टैक्सेस हमें इतने देने चाहिए हैं. साउंड्स लाइक अ पाइप ड्रीम इन पाकिस्तान, लेकिन इसी तरह डेवलप्ड ममालिक चलते हैं. द यूएस फॉर एग्जांपल हर हफ्ते रिलीज करता है एम्प्लॉयमेंट डेटा, तो हम बहुत ज्यादा फर्क है. हमने 17-18 में आखिरी लेबर डेटा रिलीज करा था और द यूएस डज इट ऑन अ वीकली बेसिस. एक्चुअली एक जमाने में हम क्वार्टरली डेटा रिलीज करते थे, लेकिन आई डोंट नो व्हाट हैपेंड एंड व्हाई वो फिर सालाना बन गया और अब आई थिंक 3 साल से नहीं निकला. बट दिस इज समथिंग दैट आई थिंक पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स रियली नीड्स टू वर्क ऑन.
एक तो यस, व्हिच मींस कि 3 साल से अभी तक डेटा हमारे पास नहीं है, वी आर रिमूविंग ऑन दैट डेटा और एस्टिमेट्स. अच्छा, ये जब डेटा हम जब स्टैटिस्टिक्स सुनते भी हैं 7-8%, दिस इज pretty generalized as a statistic that you cannot apply to the entire country, right? Uska breakup hoga probably, there will be pockets in the rural, pockets in the urban, which are differently, for lack of a better word, affected. What is the case for that in Pakistan?
Nahin, bilkul. Toh humne female aur males ki pehle se baat kar liya, so let me start with that data. First, aapki overall employment, humne bola 5-6%, 5.8% hai. लास्ट रिकॉर्डेड आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसमें मेल्स की कोई आपकी है 5.1% और फीमेल्स की है 8.3%. तो सबसे पहला ब्रेकअप तो आप ये समझ लें, ठीक है. फिर आप रूरल एरियाज में जब जाते हैं उनकी अनएम्प्लॉयमेंट 5% के करीब है, अर्बन की कोई 7% के करीब है. सो अगेन अर्बन ड्वेलर्स यूजली डोंट थिंक दैट दे आर वर्स ऑफ इन इकोनॉमिक टर्म्स, बट डेफिनेटली इन दिस केस unemployment in urban areas is higher. Okay, female unemployment is 17.5% in urban areas. Okay, ab usse phir ab samajhna shuru karne jo hum concerns ki puri baatein kar rahe the, it's for sure more of a urban phenomena. Aur bhi agar surveys agar aap dekhna shuru kare urban aur rural areas ka difference dekhne ke liye, to aap dekhenge labor force participation A is higher in rural areas. Okay, and you will have more people per household working. ठीक है, और लोग contribute करते हैं आमदनी की towards earning a living in rural areas. ठीक है, उनके household sizes भी बड़े हैं वैसे तो, लेकिन more people contribute to employment in rural areas. Again, exact stats 3.1 earners per household in rural areas, 2.1 in urban areas. तो एक बंदा पूरा या बंदी अलग है, ज़्यादा है in rural areas. Again, female labor force participation, as I mentioned, 22% in rural areas. Ye jo maine 3.1 ka bola are female. In urban areas, it's 15%. So, massive differences in rural and urban areas. Remember, rural areas make up 63% of our population, so it's quite a significant chunk. Or labor force ka koi employed ka koi 66% employment udhar se aati hai. Most interesting for me was also, and maybe we can talk about this next, is ke jaise aap humne inflation mein bhi baat kar chuki hai quintiles ki, theek hai, ki nichla tabka 20% sabse uncha tabka jo hai 20% agar aap compare kare, so ye quintiles 1 to 5 agar aap compare kare to aap dekhenge number of earners per household actually goes down. So jo ameer households hain usme kam log use kar kaam karte hain aur poorest mein ज्यादा लोग काम करते हैं. एंड ऑब्वियसली वंस आई टेल यू द स्टैटिस्टिक्स आप बोलेंगे हाँ चलो वो गरीब लोगों को ज्यादा काम करने की जरूरत पड़ती है, बट मेरे हिसाब से मैं उलट सोचता हूँ कि उसमें अमीर हाउसहोल्ड्स में एजुकेशन ज्यादा है लेकिन फिर भी काम कम कर रहे हैं लोग. सो ऑटोमेटिकली यू नो के लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन कम हुई है और अनएम्प्लॉयमेंट भी उधर ज्यादा है.
सो दिस इज अमीर तबके में जब हम देखते हैं कि लोग कम काम करते हैं, we have to think about it in this terms ki wo kaam karna chahte hain and nahi kar sakte, ya so two things, are they able to be employed and work, or are they looking for work but not getting work? Is so there a dono, difference?
So again, dono cheez hai. Theek hai, pehli jo aapne bola ke looking for work, agar looking to for work honge to labor force mein included honge. सबसे पहली बात ये, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इज लोअर इन अर्बन एरियाज, ठीक है, ये तो पहली मैंने चीज बता दी. सो दैट्स लोअर, तो पहली बात लेस पीपल आर विलिंग एंड लुकिंग फॉर वर्क, ये दूसरी. बट अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो हाई, तो अगर वो लेबर फोर्स में इंक्लूडेड है तो एंड लुकिंग फॉर जॉब्स, उनको एम्प्लॉयमेंट भी कम मिल रही है, ठीक है. समथिंग टू थिंक अबाउट के दोनों एंड से वो थोड़े वर्स ऑफ है. अगेन दिस हैज टू डू विद job creation, etc. And maybe let's talk about that when the time comes.
Okay. So, ek to humne jab statistic ki baat ki, to we use sort of broke it down into yeah, rural or urban ke beech mein, what is the kind of breakup? Phir I think there's also a very interesting breakup in the age brackets. Ke yaar, between young, middle age, old ke beech mein bhi there's a very interesting breakup. And that has a lot to do with when we constantly speak about Pakistan's demographic dividend. So, especially I want you to focus on youth unemployment because I just feel that might be on the rise.
ठीक है, इसमें demographic dividend जो है ना, इसकी maybe let's talk about that. So, Pakistan का basically historically case क्या हुआ है कि हमने बोला young population, median age 23. और मतलब फ्यूचर में बहुत ग्रोथ आने वाली है हमारी, क्योंकि हमारा यू नो जवान बाहर निकलने वाला है एक्सेट्रा. तो पहली बात ये कि हमारा डिपेंडेंसी रेशियो एक चीज होती है. डिपेंडेंसी रेशियो मतलब कि आपकी, अगर आप अपनी पूरी पॉपुलेशन को देखें तो उसमें 15 एज, सो 0 टू 15 एज में और 65 प्लस, सो बूढ़े और यंग लोगों को अगर आप देखें तो उसका रेशियो क्या है पाकिस्तान में, ठीक है. तो ये कोई आई थिंक 89% होता था, I don't remember the exact, 90% के करीब अगर नंबर होता था, ये अब 65% तक आ गया है, which means आपकी dependency ratio कम हो रहा है और ये youth की जो आप बात कर रहे थे वो अब आना शुरू हो गई है labor force में, ठीक है, और काफी हद तक आ गई अगर इतना drop हुआ है. I think youth dependency ratio अगर 82% से 58% तक पहुंच चुका है, तो काफी ज्यादा फर्क आ गया है. और मतलब so you, I would say almost क्या आप उस डेमोग्राफिक बल्ज जो बोलते हैं ना, यूथ बल्ज, उसमें है. अब इसके वर्ल्ड बैंक की जो इसमें कैलकुलेशन है वो ये है कि जैसे ये यूथ आता रहेगा और जैसे आपकी लेबर फोर्स बढ़ते रहेगी, आप खुद ही सोचे ना, अगर पॉपुलेशन बढ़ी है तो लेबर फोर्स बढ़ी है, अगर लेबर फोर्स बढ़ी है तो आपको जॉब्स और चाहिए होंगी. सो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से आपको हर साल जो है कम अज कम 3 मिलियन जॉब्स क्रिएट करनी है फॉर द नेक्स्ट 40 ईयर्स. Every year you need to create 3 million jobs. ठीक है, जिसमें से 2.1 million needs to be for young people. So it's a new entrance into the labor force. ठीक है, अब ये जरूरी क्यों है? तो youth unemployment is already high in Pakistan. ठीक है, आपके जो numbers हैं, typical numbers are के double the adult unemployment rate is what the youth. उसके हम data डाल देंगे कि आप compare कर लें कि you will see 14-15% के बीच में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट चल रही होगी, तो काफी ज्यादा है यूथ अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है, वन इजी स्टैटिस्टिक फॉर एवरीवन टू रिमेंबर इज के पीपल नॉट इन एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और ट्रेनिंग, ये एक फैक्ट डेटा पॉइंट यूज करते हैं लोग, ऑफ यंग पीपल इज 30% इन पाकिस्तान. ठीक है, सो ना वो पढ़ रहे, ना वो ट्रेनिंग में है, ना वो यू नो एम्प्लॉयमेंट में. 30% यूथ जो है ऐसा बैठा हुआ है हमारा भी पाकिस्तान में. ठीक है, दैट्स क्वाइट सरप्राइजिंग कि आपको, अगेन व्हेन आई से यूथ आई डोंट मीन के 0 टू 15 इयर्स ऑफ एज, आई मीन यूथ की ऑफिशियल डेफिनेशन पाकिस्तान में 15 टू 29 इयर्स ऑफ एज. तो समथिंग टू रिमेंबर के इन लोगों को या तो पढ़ना चाहिए या ट्रेनिंग में होना चाहिए या फिर काम करना चाहिए, और 30% कुछ भी नहीं कर रहे. व्हाई इज ऑल ऑफ दिस इंपॉर्टेंट इज जैसे हमने डेटा की शुरू में बात करी कि कोविड के दौरान ये डेटा कितना जरूरी हो गया होगा. तो जब जहां हमें 3 मिलियन जॉब्स क्रिएट करनी है, उधर ILO विच इज द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उनका एस्टिमेट था पाकिस्तान में कि 1.5 टू 2 मिलियन जॉब्स आपकी लूज हुई हैं ड्यूरिंग कोविड. ठीक है, अगर ये दिस इज द केस, लास्ट सर्वे के हिसाब से कोई 3.8 या 4 मिलियन कहने तकरीबन अनएम्प्लॉयड थे पाकिस्तान में अकॉर्डिंग टू द लास्ट सर्वे, अगर 2 मिलियन होते तो वो ऑलमोस्ट मतलब 50% से बढ़ रही है अनएम्प्लॉयमेंट आपकी, जहां 5.8% है वो कोई 8-9% तक चले जाती अनएम्प्लॉयमेंट, लेकिन आपके पास ये डेटा नहीं है टू बी एबल टू से स्टफ लाइक दैट। तो कोविड का इम्पैक्ट फॉर एग्जाम्पल आप इतना एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। सो जहां आपको 2 मिलियन यंग लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट करनी है उधर एक्चुअली जॉब्स जा रही हैं। सो उनके एस्टिमेट से कोई 22% यूथ अनएम्प्लॉयमेंट पहुंच चुकी थी ड्यूरिंग कोविड, वेरीज बिटवीन 17-22%, व्हिच इज क्वाइट हाई इन जनरल।
ओके सो आई नो द डेटा ऑन दैट इज, मतलब इतना आसान नहीं है इसको बिल्कुल इस तरीके से कैलकुलेट करना, बट रफली स्पीकिंग अगर आप 1.5 मिलियन जॉब्स लूज कर चुके व्हेन यू शुड बी एडिंग 3 मिलियन जॉब्स टू कैपिटलाइज ऑन द डेमोग्राफिक डिविडेंड, सो आप 4.5K खसारे में रफली बैठे हो
बेसिकली। या
राइट बेसिकली 4.5, एंड हाउ विल दोस, सो दैट लीड्स अस टू अ वेरी गुड नेक्स्ट लॉजिकल क्वेश्चन सेगवे, कि यार दो या तीन पार्टीज हैव टू कम टुगेदर टू मेक दिस वर्क, ठीक है। यू कुड से प्राइवेट कंपनीज, द प्राइवेट सेक्टर हैज टू कम टू द टेबल, द गवर्नमेंट हैज टू कम ऑब्वियसली हैज इज अ पार्ट ऑफ दिस इक्वेशन, एंड देन ऑब्वियसली देयर इज अ सप्लाई साइड एंड डिमांड साइड, सो एंड देन द यूथ और द पीपल हु आर लुकिंग टू बी एम्प्लॉयड इन टर्म्स ऑफ वर्किंग ऑन देयर एम्प्लॉयबिलिटी, all of these things have to fit well into this equation if this has to work. So what are some of the things that you can offer as solutions to this ever persistent unemployment problem?
Okay, so again, I'm not a labor economist, so main idhar baith ke solutions as such offer nahi karunga. Humne jin cheezon ki baatein kari hain uske bare mein sochna chahiye. So गवर्नमेंट के हिसाब से अगर हम पहले शुरू करें, आप डेटा फिक्स करें सबसे पहले, तो मेरे हिसाब से क्योंकि यही जो आप जो खसारे की बात करें कि हो सकता है 4.5 मिलियन जॉब्स हमें चाहिए हो अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, जो पाकिस्तान का पाइप जो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का सेंटर है, उनकी जो कैलकुलेशन थी ना, जहां ILO बोल रहा था कि 2 मिलियन या 1.5 मिलियन जॉब्स जाएंगी, उनकी कैलकुलेशन थी 0.6 मिलियन जॉब्स जाएंगी कोविड में, हाईएस्ट वर्स्ट इंपैक्ट उनके जो था। सो उनके हिसाब से कोई 6.6% अनएम्प्लॉयमेंट तक पहुंच जाती और समथिंग अलोंग दोज लाइंस, ठीक है। आपके पास डेटा ही नहीं है प्रॉपरली ये चीजें मेजर करने का, तो आपको ये डेटा इंप्रूव करना है, एंड आई थिंक दे आर वर्किंग ऑन दिस, जो एहसास प्रोग्राम के साथ जो रजिस्ट्री बनाएंगे, होपफुली दैट हेल्प्स, ठीक है। आपको उसमें पता होगा डेली वेजर्स कितने, आपको किस तरीके का सपोर्ट प्रोवाइड करना है, एहसास प्रोग्राम के अगर फंड प्रोवाइड करने हैं तो किसको प्रोवाइड करने हैं, क्लीनअप्स भी हो रहे हैं उस लिस्ट में। सो आई वुड से इसमें काम शुरू हो गया है, बट मोर वर्क नीड्स टू बी डन। सबसे पहले तो आपको ये है, ठीक है। देन यू नीड टू हैव, देयर आर टू प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो अब सबसे मैसिव प्रॉब्लम मेरे हिसाब से ना वो एक्चुअली है फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का, कि आप अगर बांग्लादेश की हमने बहुत बात करी है इस पॉडकास्ट में, ठीक है, हमारी जहां 20-22% लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है, वहीं बांग्लादेश जो है 36% पे बैठा हुआ है, ठीक है, एंड इट्स राइजिंग। उन्होंने जो काम किया है अपनी फीमेल्स को एम्पावर करने में, इट्स बीन फैंटास्टिक, ठीक है। रेडीमेड गारमेंट्स का जो उनका सेगमेंट है, इट्स डोमिनेटेड बाई फीमेल्स, एंड यही चीज पाकिस्तान में भी बहुत आसान, मे बी नॉट एज आसानी से, लेकिन हो सकती है, ठीक है। आपको कल्चरल फैक्टर्स थोड़े बहुत थोड़े इनकॉर्पोरेट करके, लोगों को और एजुकेट करके, मे बी यू नो, सो अगर KP में फॉर एग्जाम्पल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन फीमेल्स की कम है, आई एम श्योर दे कैन डू समथिंग टू रेज दैट। बलोचिस्तान में आपको बस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है, ठीक है। 9% फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इज रिडिक्युलस ऑलमोस्ट। तो ये अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए यू नीड टू डिसाइड कि प्राइवेट सेक्टर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा या गवर्नमेंट सेक्टर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा, ठीक है। अब आई एम नॉट गोना टेक वन स्टांस ऑन अनदर, आई विल जस्ट से कि लोगों के जनरल स्टांसेस क्या होते हैं। तो लोगों के जनरल स्टांसेस होते हैं कि गवर्नमेंट को एम्प्लॉयर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए, ठीक है। अब एम्प्लॉयर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का मतलब, अगर उनको प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट कॉम्पिटिशन दे फॉर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ताकि प्राइवेट सेक्टर डज मोर। दैट्स बेसिकली हाउ पीपल टेंड टू थिंक अबाउट इट, कि अगर प्राइवेट सेक्टर को जब तक नज ही नहीं मिलेगा, वो एसेंशियली नहीं, दे विल नॉट क्रिएट इनफ जॉब्स फॉर पीपल। अभी उनको पता है सप्लाई, अगर अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है तो सप्लाई ऑफ लेबर ज्यादा है, अगर सप्लाई ऑफ लेबर ज्यादा है तो वो वेजेस भी कम रखेंगे। मैं पिछली कॉन्वर्सेशन से कनेक्ट करना चाह रहा हूँ एंड आई एम ट्राइंग टू से के मे बी इट्स नॉट अ बैड आइडिया फॉर के गवर्नमेंट ज्यादा स्पेंडिंग शुरू कर दे. सो आपने फॉर एग्जाम्पल देखा रोडो शोडो के जो प्रोजेक्ट्स हैं, डैम्स जो क्रिएट हो रहे हैं, कंस्ट्रक्शन पैकेज जो निकला है, ऑल ऑफ दैट इज अ गवर्नमेंट इंसेंटिव फॉर पीपल टू बी एम्प्लॉयड. ठीक है, कोविड के दौरान
एग्जैक्टली
जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भी रिकॉग्नाइज करी थी. ठीक है, सो मैं इस इन चीजों की बातें कर रहा हूँ कि आप ये और लेवल पे करना शुरू कर दे. ठीक है, आपका फिस्कल डेफिसिट 7-8% वैसे ही है. हाँ, मैं जानता हूँ हमने बजट सजेट की बातें करी हैं और के हाउ दे नीड टू रिड्यूस फिस्कल डेफिसिट, लेकिन फिस्कल डेफिसिट हमने बोला कि आपको सूद पेमेंट्स कम करके रिड्यूस करना है, नॉट दैट आप डेवलपमेंट फंडिंग कम कर दें या वो कर दें. अगर आप रिसेंट बजट की अपडेट देखेंगे जो मार्च तक जो आई थी, उसमें हर चीज जो है आपका फिस्कल डेफिसिट लोअर हुआ है एंड पीपल हेडलाइंस में आ जाएगा, वो ये नहीं नोटिस करेंगे डेवलपमेंट स्पेंडिंग इज लाइक ऑलमोस्ट हाफ ऑफ वेयर इट नीड्स टू बी. सो अगर डेवलपमेंट स्पेंडिंग नहीं है पाकिस्तान जो PSDP की हमने पहले बात करी है, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसमें अगर उसमें पैसा कम खर्च करेंगे तो आप यू विल नॉट बी एम्प्लॉइंग द अमाउंट ऑफ पीपल दैट यू नीड टू एम्प्लॉय. तो उसको थोड़ा आप बल्कअप करें. उसी तरह प्राइवेट सेक्टर में आप कंपटीशन भी दें. ठीक है, तो पहली बात तो ये हो गई. हम अभी जो लेकिन हम जितनी भी ये कंस्ट्रक्शन पैकेज और प्लांटेशन ड्राइव की बात करें, ये है लो स्किल लो वेज जॉब्स. ठीक है, तो अब मैं दूसरी चीज पे आ जाता हूँ कि आपको हाई स्किल और हाई वेज जॉब्स भी क्रिएट करनी है. ठीक है, अब हाई स्किल ये करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले तो वो जॉब्स जो है विल कम विद GDP ग्रोथ with general progression, आपके अगर value add in economy will improve. For अगर आप अभी for example raw cotton बेच रहे हैं, उसमें जितनी employment है, अगर आप उसी labor को skill करके उनसे t-shirts बनवाएं for example, या फिर athleisure products बनाएं या जो भी बनवाएं, synthetic products use करें, fiber use करें, sorry, तो उनकी basically give them a high skilled job and give them high वेज अकॉर्डिंगली. ठीक है, इसके लिए आपको व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज वोकेशनल ट्रेनिंग. ठीक है, आप एजुकेशन को अभी साइड में थोड़ा सा पार्क करें, आपको वोकेशनल ट्रेनिंग इंप्रूव करनी पड़ेगी ताकि आपके ये स्किल्स और जॉब्स का मिसमैच ना हो. दैट्स बेस. और हमारा है मतलब NAFTEC हमारे जो नेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग का जो वो है, इट्स डूइंग अमेजिंग वर्क. आपने कामयाब जवान का भी सुना होगा जो उस्मानदार साहब चला रहे हैं. Within कामयाब जवान there are several programs, आप देखेंगे youth entrepreneurship scheme भी है, तो वो self employment encourage कर रहे हैं. हुनरमंद program है जो ये skills training program है जिसकी मैं बात कर रहा था, particularly for females they're working over there as well. इन programs को बस scale up करना है, because इन programs का अगर आप total करेंगे भी, I think I did it once, और कोई 1 to 1.5 million jobs जिससे हर साल create होने का वो है. Remember हमें 3 million jobs कम अज कम क्रिएट करनी है कोविड के लॉस के बाद, प्रोबेबली मोर. ठीक है, ये मैथ अभी तक की नहीं है. तो दैट्स बेसिकली द पार्ट दैट आई वुड फोकस ऑन. आखिरी पार्ट वुड आल्सो बी एजुकेशन. ठीक है, कि हम जितनी भी बात करें कि लेबर फोर्स में इनफ पार्टिसिपेशन नहीं है, हमारे यहाँ एजुकेशन भी बहुत कम है. राइट, वी हैव द सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड. तो एंड व्हाई दे आर आउट ऑफ स्कूल इज जनरली बहुत इंटरेस्टिंग मैथ है, मैंने पहले देखी थी, सो मे बी आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट नंबर्स, बट जनरल उसकी जो आउटपुट थी ना, उसकी थी कि इट एक्चुअली मेक सेंस फॉर किड स्टूडेंट्स टू ड्रॉप आउट इन प्राइमरी स्कूल, बिकॉज प्राइमरी स्कूल से ग्रेजुएट होके आपको जो जॉब्स मिलती हैं दे आर हायर पेइंग देन जो आपको जॉब्स मिलेंगी सेकेंडरी स्कूल के बाद, क्योंकि सेकेंडरी स्कूल का इतना कोई टेक्निकली फायदा ही नहीं है आपको जॉब मार्केट में, बिकॉज असल फायदा आता है यूनिवर्सिटी पे, टर्शियरी एजुकेशन पे, हायर एजुकेशन पे. तो बीच में अगर आप ड्रॉप आउट कर देते हैं, इट्स एक्चुअली बेटर फॉर यू. अगर आप सेकेंडरी स्कूल तक जाएंगे, यू विल प्रोबेबली बी एट अ लॉस. ठीक है, तो इसकी वजह से हमारा ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा है और आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन बहुत ज्यादा है. आई थिंक अराउंड 23 ऐसी कुछ मिलियन स्टूडेंट्स हु शुड बी इन स्कूल और नॉट इन स्कूल. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको यू नीड टू इंसेंटिवाइज स्टूडेंट्स टू एंड फैमिलीज टू कीप देम इन स्कूल. इससे क्या होगा कि आपकी फ्यूचर में हायर स्किल्ड लेबर आएगा, जैसे ही वो सप्लाई क्रिएट होगा उसका डिमांड, उसकी डिमांड भी यू नो थ्रू एवरीथिंग एल्स वी बीन टॉकिंग अबाउट क्रिएट हो जाएगी. सो दीज आर द फैक्टर्स दैट आई'ड से फोकस ऑन. अगेन मैं इत कोई इकोनॉमिस्ट के हिसाब से ये नहीं दे रहा, मैं जनरली नोइंग अ बिट अबाउट द इकोनॉमी उसके हिसाब से थोड़ी ये सजेशन दे रहा हूँ कि आप गवर्नमेंट डेटा इम्प्रूव करें, गवर्नमेंट बिकम्स ऑफर्स एटलीस्ट अ सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज एन एम्प्लॉयर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट, इट यू नो इनकरेजेस फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, encourages higher skilled jobs, encourages skills training, and lastly also encourages education because our state of education is quite bad.
Yeah, so also encourages entrepreneurship.
Bilkul.
Yeah, job creation. I think my last question to you would be, Kiyat, this was this, you've mentioned twice in different breaking down different questions, the very concerning statistic ke about 20% of the females are participating in the labor force. You mentioned Bangladesh was at 36%. I know Vietnam, I think, is at 70%+, which is crazy. I think you've touched upon what the factors are, but I'd love if you could go to a little bit more detail. I know it looks a little unfair to privileged men speaking about the everyday issues that are keeping females from being part of the progress that this country has the potential for. But generally for awareness, I'd like people to understand ki aaj masla kya hai, or how have other countries coped with this? How are other countries faring? And how could we possibly incentivize more participation in female forces? I know for a fact you've done this piece on the dairy sector as well. So I'd love to know about that example.
So maine jo piece ki jo baat kare wo Pakistan Business Council ke saath humne ek article likha tha, their Center for Responsible Business. Agar unke saath jo kaam kiya tha and amazing work that they're doing, to kaam idhar ho raha hai where जो सबसे पहले जो बात है ना वो है कि लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी कि फायदा क्या है इन सब चीजों का. ठीक है, तो IMF ने रिपोर्ट निकाली कि पाकिस्तान की GDP 30% बढ़ जाएगी. सो 30% इंक्रीज इन GDP अगर आप फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इंक्रीज करें. सबसे पहली बात तो ये होगी कि आपके पास एक टैंजिबल बेनिफिट पता है पड़ा है. सब जाके अभी जो है वॉरेन बफेट की स्पीच देखें, maybe right after this, after they finish this episode, where he talks about female participation, कि उसने बोला कि आपने historically अगर अपनी आधी population को काम ही नहीं करवाया तो मतलब that basically you haven't realized half the potential of human beings all around the world. तो पाकिस्तान में अभी आप सोचें आपने 30-40% females का you haven't let them realize their true potential. So, सबसे पहले तो ये करना हम शुरू करते अवेयरनेस क्रिएट करके. एक और चीज जो साथ में हो रही है वेरी इंटरेस्टिंगली, SECP ने रिपोर्ट निकाली शोइंग प्रॉफिटेबिलिटी विथ इन्वॉल्वमेंट ऑफ फीमेल्स एट लीडरशिप पोजीशन. ठीक है, तो आप क्योंकि अगर आपको नंबर ही देखने हैं, आप फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टर्स लाउंज इज इन्वॉल्व इन कैपिटल मार्केट, उन्होंने यही सो लिस्टेड कंपनीज की दिखाई या रजिस्टर्ड बिजनेसेस के दिखाई कि प्रॉफिटेबिलिटी, सो रिटर्न ऑन एसेट्स क्या है और रिटर्न ऑन एक्विटी क्या है. एंड यू विल से सी इन एवरी केस जहां आप विमेन को इन्वॉल्व करते हैं उधर प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है. ठीक है, जो आप डेयरी उसकी बात कर रहे थे, दैट्स मोर फॉर कि आप, मैं बांग्लादेश से कंपेयर इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज कल्चरल तो आपका इशू है. ठीक है, अब जब तक वो कल्चरल इशू, आई डोंट नो इफ इट्स how you can get rid of it given the nature of Pakistani population in general. Lekin ab wo cultural constraints hain to un constraints ke sath aap baith ke kaam kare tabhi Bangladesh se comparison jo hai thoda bahut it makes sense. Unhone cultural constraints ko dekha, unhone bola acha hum kya kya kar sakte hain, and usi hisab se employment opportunities create ki. Theek hai, ab so initially ek aur jo cheez thi ke work from home se मोबिलिटी, अपवर्ड मोबिलिटी जो होती है ना, सो आप चले आप मैनेजर लेवल तक पहुंच गए किसी ना किसी तरह, लेकिन आप मैनेजर लेवल से ऊपर जाने में डिफिकल्टी होती है वर्क फ्रॉम होम में इन जनरल, बिकॉज अगर एक बंदा है एंड ही कैन गो टू ऑफिस एंड ऑफिस में वो रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं एटसेट्रा, इफ देर इज अ फीमेल हु इज वर्किंग फ्रॉम होम, एंड दिस इज द केस बाय द वे, 19% ऑफ पाकिस्तानी कैन वर्क फ्रॉम होम, ऐसी कुछ रेशियो है of ke work from home kitni aurte karti hain. So if you ab jaake covid ke baad jab work from home is become more acceptable, hopefully more and more people can actually become part of the labor force because they know that you can work from home. And there's a terrific startup called Dot in Line, and I know we discussed it before, but they're providing employment opportunities for women at home. Okay, now they're providing education ke through their online tuitions provide kar rahe hain, etc., etc. All of this is basically aap cultural context ko keep in mind. Maybe mardon se bhi bole thoda sa kaam kar le in general, and make sure that you make the full use of the potential that's available to you in general. So mere khayal se wohi aap Bangladesh ka example dekh ke jitni bhi aap female labor force participation increase kar sakte hain aap karein. The safety and security, I think there are startups like Airlift or Swivel, unke basically mission hi iski wajah se particularly shuru hua tha, to provide safe transportation to and from home. I should also say ki na inme se koi startups mujhe paise nahi de raha, to main I'm promoting their work just like that, because I think it's important to keep in mind ke inke meta purposes kya hain in sab startups ke. So I think definitely there is work being done, and hopefully thode aur level pe jab scale pe kaam karna shuru hoga to aapko thoda change dikhna shuru hoga.
So there's also initiatives like I think She Loves Tech and a couple of others who are training specifically women in learning how to code. So there is that. Then women have started to now, once they learn how to code, they learn how to do basic coding or CMS, things like that, then you can have the opportunity to freelance as well. But having said that, haan, theek hai, cultural factors hain, and this is my opinion, obviously, this is not Faiz's opinion. Matlab zaruri, I would not like to impose or share or connect my opinion to Faiz in case he gets in trouble. But yes, work from home ka opportunities ab zyada hain females ke liye, and that probably works in the cultural context. But yes, Airlift hai, Swivel hai, Kareem hai. When you have better transport, when girls are able to, their mobility is more safe, when they're able to go to and fro from work, to and fro from meetings, jab wahan safety aaye, to that should increase their chances. I guess it's not looking fairly bleak. I think there is some sort of progress wahan, but I think we need to actively campaign, not I'd say campaign, but create awareness about ke yaar 50% jab aapki awam hai, if you do believe ke yaar, if you give everybody the equal opportunity, ke the next best thing in tech, in medicine, in life sciences, wherever you are, could come from anywhere in your population, then keeping behind, and I'm using these words pretty actively, restricting a certain percentage of your population from participating is only putting yourself in handcuffs.
It's good you said handcuffs, because I think it's criminal that you're doing this. और मैं वर्क फ्रॉम होम की जनरली बात इसलिए कर रहा था बिकॉज सर्वेज ऑब्वियसली होते रहते हैं, तो उसमें यू विल फाइंड के 83% of women say they cannot work outside the home because of household responsibility. 83%. So generally उसकी like keeping that in mind के if the 83% side के हमारे reason for not working outside the home is household responsibilities, तो उसमें अगर आप work from home में अगर generally कुछ provide कर सकते हैं, या फिर डे केयर सेंटर्स जैसे हमने बात करी उसका थोड़ा maybe government funded daycare centers, I don't know ke usme kitni how much people will have faith in that, lekin start something so that you can give equal opportunities to both genders.
So the private company having a daycare center, an affordable daycare center, if it's not part of the private company, something of that sort has to come if you want women to stay longer in the workforce. Also, and I got this from your article as well, and this was very interesting. The implementation, a strong implementation of harassment laws, because a lot of your female workforce will not A, get into the workforce, or B, will drop out, given that there are cases of harassment that go, and just are brushed under the carpet. So that I think there is some progress on that. There's a lot that needs to be done there. So when you have women who feel safe when they go from point A to point B. And when they reach at point B and are working at point B, they should feel safe while working. If you can ensure that, then you can increase this ridiculously low level. Great having this conversation with you, Fez. Again, as a pleasure as always. So we had a look, unemployment, beruzgari hoti kaise, measure kaise hoti hai, Pakistan mein masla kya hai, and as usual, data ka masla rehta hai. But hopefully, we are making progress on that. The current government is making progress on that. Hamara breakup jo hai beruzgari ka, wo urban aur rural ke beech mein kaisa hai? And youth ke upar uska kya asar andaaz hota hai, aur female participation ke upar bhi hum logon ne baat ki. So there's a lot to digest here. We will hopefully be putting up all the links, all the charts here. There's a lot you can go out and read. Neither of us is an absolute expert on this, but hopefully we've gotten across enough content for you to have and take forward this conversation. And on that note, until next time, Allah Hafiz.